Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Kya sthiti, apne andar kya sthiti aati hai? Turant gyani nahi banna hai. Natasya sarvabhuteshu kashchid artha vyapasrayah. अस्य यानी उस ज्ञानी का सर्वभूतेश सभी प्राणियों में कश्चिद न अर्थ व्यपाश्रय ऐसा अन्वय करना है। उसका कोई अर्थ व्यपाश्रय जो है नहीं रहता है, अर्थ यानी प्रयोजन। हाँ, प्रयोजन का आश्रय वो अर्थात कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ठीक, हाँ नहीं समझे? क्या नहीं समझे, क्या रखा है? सभी भूतों में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। संपूर्ण भूतों में, क्योंकि अरे भाई, कोई भी प्राणी का वो कुछ कल्याण किया, कुछ उपदेश किया हो या कुछ कल्याण किया है, अब कल्याण किया तो उसका तो कुछ प्रयोजन तो होगा ही ना। वो बिना प्रयोजन से किसको क्यों एक पैसा देगा? क्यों है? दस पैसा कोई देता है, दस रुपया सौ रुपया कोई देता है, उसका कोई प्रयोजन तो होगा। हर प्राणी बिना प्रयोजन से प्रवृत्ति नहीं होते। ऐसे ये भी जो एक महात्मा है, तो ये भी कुछ ना कुछ जो है प्राणियों का कुछ ना कल्याण करता है। अब वो कल्याण का कोई प्रयोजन तो होगा ही है, हाँ? लेकिन उस प्रयोजन का आश्रय यहां नहीं है, यानी उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। बोध है उसका एक स्वभाव बन गया। अब जब तक वो, यदि ये ऐसा नहीं होता ना, ये जीवन मुक्त पुरुष ही ये पीढ़ी खत्म हो जाते। ज्ञान हुआ और शरीर समाप्त, फिर वो उपदेश कैसे करेगा? जो मुमुक्षु साधक हैं, जिनको ये उपदेश चाहिए, यदि ऐसे ही जीवन मुक्त पुरुष ऐसे महात्मा नहीं रहेंगे, ये कौन उपदेश करेगा? तो भगवान का यही लीला है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी प्रकार प्रवृत्ति होता है। और ये जो प्रवृत्ति जो है उसका सहज प्रवृत्ति, समझिएगा। आगे, तथा चाह भगवान परमेश्वर लैंगे कालकूट उपाख्याने ज्ञान नैत। हाँ, यानी भगवान परमेश्वर जो है लिंग पुराण में कालकूट उपाख्यान है, तो उसमें उस उपाख्यान में भगवान परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान नैतेन विप्रस्य त्यक्त संगस्य देहिन कर्तव्यम नास्ति विप्रेन्द्र अस्ति चैतत् अस्ति चैतत्विन्न च अस्ति च अस्ति चेत तत्त्ववित् न च, ये संधि विच्छेद होगा। अस्ति चेत तत्त्ववित् न च, तो कहा कि ये जो विप्रेन्द्रा, ये वहां का संबोधन है। कहा कि है विप्रो के इंद्र, अर्थात जो द्विज है, द्विजगण है, जो द्विजेंद्र है, विप्रेंद्र है, कि ज्ञानेन एतेन, इस ज्ञान से ही वो जो देही यानी वो जो जीव यानी प्राणी और वो जो विप्र है, त्यक्त संगस्य, आसक्ति को छोड़ देता है। ठीक, जब आसक्ति को छोड़ देता है, कर्तव्यम नास्ति, ठीक, उसका कोई कर्तव्य ही नहीं रहता है, आसक्ति छोड़ देता है। जब आसक्ति को छोड़ देगा तो फिर जिसको हम प्रेम करते हैं, यदि हम बोलेंगे कि हम पीढ़ी पीढ़ी तक हम दोनों मिलकर के हम रहेंगे, क्योंकि आनंद है, दोनों मिलजुल कर रहते हैं, इसकी मानसिकता उसकी मानसिकता दोनों जम गया है। अब जमाते जमाते जब 80 साल तक जीवित रहोगे, फिर इच्छा नहीं होगी कि हम दोनों अगले साल रहेंगे? इच्छा नहीं होगी? फिर कामना करोगे कि चलो हम अगले पीढ़ी भी रहेंगे, अगला जन्म भी रहेंगे? तो फिर जो जिस कामना से और दोनों हम मिलजुल करके हम मरेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है दोनों एक ही साथ पहाड़ से कूद पड़ते हैं, एक ही साथ कूद पड़ते हैं, किसी ने कूद पड़ते हैं। अगला जन्म में रहने के लिए तो उनके अंदर कामना है, और साथ साथ जन्म तक हम मिलजुल कर रहेंगे। ये गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में ये भाव आ जाता है, पक्की बात है। आप किसी को प्रेम करेंगे तो ऐसे हो जाता है। अब ऐसा जो होगा, आप बोलेंगे उसमें यदि आसक्ति होगी तो पक्की बात है, और जब आसक्ति नहीं होगी तो फिर उसके साथ मिलोगे क्यों? यदि सारे जीवन में आप एक कर्तव्य रूपेण ही स्त्री के साथ रहे कि कर्तव्य निभाए, खिलाए पिलाए, जो भी कुछ किए और उसके साथ जो आसक्ति है वो आसक्ति मिल गई, तो फिर अगले जन्म दोनों मिलकर कैसे जियोगे, पैदा होंगे? कभी भी नहीं होता है ना। एक महात्मा, अच्छे एक महात्मा थे, तो उनके आश्रम में बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो एक जिसे सभी को प्रेम करना है प्रेम करते हैं और किसी किसी काम में जुड़ा देते हैं, लगा देते हैं, काम में लग जाते हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वो एक लड़की जैसे 12-13 साल से कुछ आई होगी और जब उसको 20-22 साल हो गई, अब वो महात्मा तो उसको तो अपने प्रेम से वो तो काम करवाते हैं और साधक को यदि कोई कुछ जिज्ञासा होगी तो उसे मिटा देते हैं। लेकिन वो लड़की जो है उसके पीछे ऐसा पड़ गई कि आपके बिना मैं जी नहीं सकती हूं, महात्मा के पीछे। और जबकि कोई शारीरिक संबंध ना कुछ है, ना कोई कोई प्रेम की कोई बात है, बात कुछ नहीं, जैसे जनरल प्रेम है, एक स्वभाव से जो प्रेम होता है वो वही प्रेम है। लेकिन लड़की जो है ऐसे उसकी कुछ मन में ऐसी दिल में बैठ गई चीज, अब मैं आपके साथ भी रहूंगी, आपके साथ ही मरूंगी, आपके साथ खाऊंगी, आपके साथ बिल्कुल मर जाती है, छोड़ती नहीं है। अब ये कहां की बात है, कब की बात है? इस जन्म में तो कुछ तो है नहीं है, कोई बात ही नहीं है। और वो लड़की भी ऐसी नहीं कि कोई महात्मा के सामने कोई प्रसंग रख देगी कि मैं आपको ऐसे प्यार करता हूं, ऐसे दम भी नहीं है, क्योंकि महात्मा अपनी स्थिति में है। लेकिन एक बाह्य के रूप में इतनी सट जाती, इतनी सट गई, क्या परेशान है वो महात्मा। अब ये जो है कामना जो है जन्म जन्मांतर की कामना है। अब इसी जन्म में ये महात्मा बहुत कई हजारों सालों पीढ़ी की बात होगी, कभी उनके साथ कभी प्रेम का संबंध होगा, पति पत्नी बने होंगे, महात्मा कुछ होगा। अब इस जन्म में तो ये एक अच्छे महात्मा है और वो बहुत ऐसी स्थिति में आई होगी, अब वो जो उसके साथ जो सट गई, अब इसे साफ नजर आती है कि ये जन्म जन्मांतर की बात है और उसके अंदर वही कामना है, अब वो छोड़ नहीं पा रही। अब ये जन्म उसका इस प्रकार खत्म होगा। तो महात्मा ने जो कामना को त्याग किया तो ये स्थिति बनी। यदि महात्मा के अंदर यदि कामना होती तो फिर पति पत्नी बन जाते, बात आई समझ में? तो ये जो कामना जो है यदि आसक्ति यदि होगी तो फिर ये जो पीढ़ी पीढ़ी तक चलती रहती है, यदि नहीं होगी तो फिर छूट जाता है। ऐसे कट 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 जो है जिन जिन के साथ जो है वो कट कट होते होते ही फिर आदमी एक संत, एक शुद्ध संत बनता है। बहुत जन्म जन्मांतर का कामना होती है तो उसकी कोई कर्तव्य नास्ती, कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। अस्तित्व यदि होगा तो फिर न तत्वित, फिर तो वह तत्वित नहीं है। यदि होगा तो फिर तत्वित नहीं है, ठीक। देखिए आगे, यह लोके परे चैव कर्तव्यम नास्ति तस्य वै जीवन मुक्तो यतस्तु स्याद ब्रह्मवित परमार्थतः, ठीक। इस लोक में, परलोक में, परे परे यानी परलोक में कर्तव्यम नास्ति तस्य, तस्य कर्तव्यम नास्ति, उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है, बर्बाद हो जाओगे। कर्तव्य नहीं है और फिर कर्तव्य कर रहा है आदमी, ठीक, तो उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता है। जीवन मुक्त यतस्तु स्याद ब्रह्मवित परमार्थतः, वो जो है वस्तुतः परमार्थतः, वो जो वस्तुतः वो तो ब्रह्मवित है, ठीक। फिर जो है वो तो जीवन मुक्त बन गया, ब्रह्मवित है पर इसलिए वो जीवन मुक्त बन गया, उसका कोई कर्तव्य नास्ति, कर्तव्य ही नहीं है। भोग से बंधन है भाई, भोग से बंधन है, योग से मुक्त है, यदि योगी है तो फिर वो मुक्त है और भोग है तो बंधन है। बस इतने हैं कि आपका भोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको समझना है, भोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कर्म कर रहे हैं वो भोग जो हो रहा है, भोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको समझना है। यदि भोग हो रहा है तो बंधन है, और भोग का परिभाषा सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है भोग, सुख भोग दुख भोग, इन दोनों में से कोई एक साक्षात्कार का नाम भोग है, साक्षात्कार ज्ञान को कहते हैं। भोग तो हम जो समझ रहे हैं, हम जो फंस जाते हैं कि कैसे फंस जाते हैं, देख रहे हैं कि वो जो है बड़ा गधा में सोया है, देख रहे हैं कि थाली में बहुत सारे पदार्थ है वो खा रहा है, इतने मात्र से भोग कर रहे हैं इसलिए फंस गए हैं, हम ऐसे समझ रहे हैं। वस्तु तो है ऐसा नहीं होता है। जो खा रहे हैं यदि उससे यदि वो सुख का ज्ञान ले रहे हैं, सुख मिल रहा है तो भोग है। अथवा कड़वा सब्जी कोई करेला सब्जी अनुकूल नहीं, करेला दे दिया है, अब करेला खाने की इच्छा नहीं और करेला खा रहा है और दुख हो रहा है, दुख ये भी भोग है। तो एक जो है एक साक्षात्कार यानी एक ज्ञान होता है, सुख का ज्ञान होता है और दुख का ज्ञान होता है, इससे भोग होता है, इसको एक भोग कहा। अब इससे यदि सामने भी करेला का कोई सब्जी है और वो कैसा खा रहा है और ना उसको कोई सुख है ना दुख है, तो फिर तो वो जीवन मुक्त है, वो भोग नहीं है, वो तो योगी है, नहीं समझे? हाँ, आप जो है यदि आप गदा में सोए हैं, सो रहे हैं और गदा से आपको यदि सुख मिल रहा है तो वहां तोगी इंद्रिय का भोग हो रहा है, शरीर में जो तोगी इंद्रिय है भोग हो रहा है, ठीक है? हाँ, आपको पूरा एकदम पूरा बाण जैसे एक इंद्रियों को फिर दिखाकर मुझे बताना पड़ेगा, आप सामान्य शब्द से समझेंगे नहीं। फिर यदि कोई स्त्री को यदि हम हाथ लगा रहे हैं और हमको उसको सुख मिल रहा है तो वो भोग है, बात आ गई समझ में? खा रहे हैं मीठा हो रहा है, क्या मीठा है, मजा आ रहा है, भोग हो रहा है। तो जो खा रहे हैं ये भोग नहीं है, खाने से जो एक सुख का एक जो ज्ञान हो रहा है वो भोग है। और वो सुख का ज्ञान आपको क्या, अब ये कैसे सिद्ध होगा? आप सुबह कोई पार्टी में गए, खा लिए, हाँ, और रात में भी आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कमरे में बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बड़े फ्रेश हैं आप, होता है ना? कोई पार्टी में गए, बड़ा मजा से खाए, अब आए, बोले वाह आज क्या मजा आ रहा है, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है एक आपके अंदर जो एक प्रसन्नता जो झलक रही है, खाए तो आप 5 मिनट में खाए, कोई पार्टी में जाकर के दिन 12 बजे आप 5 मिनट में खाए खत्म किए, लेकिन अभी जो है रात भर शाम में किसी से बातचीत कर रहे हैं और जो आप जो प्रसन्नता आपके अंदर में जो आ रही है ये किसकी प्रसन्नता है? खाया हुआ का ही प्रसन्नता है। यदि वो प्रसन्नता खाया हुआ का प्रसन्नता है तो जरूर उस समय आप भोग कर रहे थे, आज एक पार्टी गया था, क्या मजा आया है, क्या आइटम बनाया था बताओ। जो अभी आप मुंह में वो रसगुल्ला नहीं डाल रहे हैं, आपके जीवा इंद्रिय के साथ वो रसगुल्ला का जो मिठासपन है वो संबंध नहीं है, अभी संबंध तो 2 मिनट में खत्म हुआ, फिर भी आपका यदि आनंद में यदि हो रहा है तो जरूर वो स्मृति ज्ञान है। और स्मृति ज्ञान जो है अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति ज्ञानम, और वो जो अनुभव जो है आपका सुख का अनुभव था और अब जो है वो स्मृति ज्ञान के रूप में सामने आ रहा है। तो फिर जो है ऐसे यदि हो रहा है तो कल आपको जब आप खाते समय आप जब बैठेंगे तो आपको जरूर आप थोड़ा दुखी होंगे, अरे आज कोई आइटम आज नहीं, कैसे खाऊं, तो जरूर उस समय भोग हुआ था। पकड़ में आ रही है क्या बात? यदि आप यदि जैसे महात्मा लोगों के सामने यदि बड़ा बढ़िया व्यंजन पदार्थ आदि सौंप देते हैं और बस ऐसे लिया खाया और उसको पूछो, तुम शाम को पूछो कि स्वामी जी दोपहर में क्या क्या आइटम, अरे क्या आइटम था, पता नहीं क्या खिला दिया था अब याद ही नहीं आती कि क्या क्या खाया था वो, और वो प्रसन्नता की बात ही नहीं छोड़िए अब। तो इसलिए जो है केवल खाने क्रिया मात्र से आप एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं कि ये भोगी है, और गादा में सो रहा है का देखने मात्र से आप नहीं बोल सकते हैं कि ये गादा में सोकर भोग रहा है। इसलिए ये भोग की परिभाषा जो है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है भोग यानी एक ज्ञान को ही भोग कहते हैं, उसको समझ के लीजिएगा। देखिए आगे ज्ञानाभ्यास रतः नित्यं विरक्तः यर्थ वित स्वयं कर्तव्य भाव मुत्सृज्य ज्ञानमेवाधिगच्छति। जो ज्ञान अभ्यास से रत है हमेशा नित्यम वो जो है अर्थवित स्वयं वो अर्थवित है यानी परमार्थ जो तत्व है उसको जो दित यानी उसका जो ज्ञानी है यानी वास्तविक स्वरूप का जिसको ज्ञान हो गया, ठीक है, और ऐसे जो ज्ञान का अभ्यास में रहता है, हमेशा उसमें रमता रहता है, ज्ञान अभ्यास में रमता रहता है। मैं जो आपको जो बोल रहा हूँ, आपको क्या चीज दिखा रहा हूँ, हमेशा एक ज्ञान का अभ्यास है। आप ये मत समझिएगा कि कभी ऐसा एक दिन आ जाएगा, एक ज्ञान एक बार हो जाएगा, पूरा मैं छोड़ छाड़ के बस आनंद में, ऐसा होता नहीं है। हाँ, सतत से ये एक भी जो मैंने आपको जो एक जो टुकड़ा जो दे रहा हूँ, ये जो अभ्यास की जो बात बता रहा हूँ, आपको पल पल ये जो अभ्यास करना पड़ेगा, हमेशा अभ्यास में, हाँ अभ्यास करना पड़ेगा। तो ज्ञान अभ्यास में रत जो हमेशा, और वो जो है और परमार्थ का जो दर्शन कर चुका है, ज्ञान हो चुका है, वो जो विरक्त हो जाता है। और फिर जो है कर्तव्य भावम उत्सृज्य, और कर्तव्य भाव को जो है वो त्याग देता है। अभी बोलेंगे अभी मैं कर्तव्य को छोड़ दूंगा और ऐसे पूरा चारों तरफ विषय को जो है बटर के रखूंगा और कर्तव्य भाव से रहित होकर के मैं थोड़ा सा लेता रहूंगा, ऐसा होता नहीं है। बात आ गई समझ में? आपको पहले थोड़ी छोड़ छाड़ना पड़ेगा और अभी से चारों तरफ पूरा एकदम व्यवस्था कर रखेंगे और सबको, अरे मैं ऐसे नहीं लूंगा, थोड़ी सी छोड़ भाव मेरा कर्तव्य भाव इसमें नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ज्ञानम एव अधिगच्छति, फिर ज्ञान को ही वो प्राप्त करता है। हा? आगे वर्णाश्रमाभिमानी यस त्यक्त्वा ज्ञानम दिलोत्तमाः अन्यत्र रमते मूढ़ स अज्ञानी नात्र संशयः। जो द्विजोत्तम है, जो द्विजो में जो श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ठीक, तो वो जो है यह वर्णाश्रमी अभिमानी, यानी वर्ण और आश्रम के जो धर्म का अभिमानी, अभिमान करने वाला, ज्ञानम त्यक्त्वा, ज्ञान जो उसका जो ज्ञान को त्याग करके, अब ज्ञान को त्याग करके इसलिए मैं थोड़ा संशय में पड़ गया, तो ज्ञान मतलब जो ज्ञान भाव को जो है, ज्ञान दृष्टि जो है उसको जो त्याग करके, अन्यत्र रमते मूढ़, अब जो है अन्यत्र जो है अन्य विषय में जो रमता है, बहुत जरूर वो मूढ़ है, स अज्ञानी न अत्र संशय, और वह अवश्य अज्ञानी है, इसी में कोई संशय नहीं है, ठीक है। क्रोध भयम तथा लोभ मोह भेद मदस्तम धर्माधर्म उच्च तेषाम ही तद्वशाच तनुग्रह। कहा कि ये जो क्रोध है, ये भय है, उसी प्रकार जो लोभ है, मोह है, और ये जो भेद है, भेद बुद्धि है, और जो मद है, और तम यानी जो अज्ञान है, और ये जो धर्म है, ये अधर्म है, च तेषाम, तेषाम उन कर्मियों का ही, कर्म को यानी कर्म का अनुष्ठान करने वालों का ही ये सारे है, ज्ञानियों का तो कुछ रहता नहीं है। अब ज्ञानी जो क्रोध करता है, क्या क्रोध नहीं करते हैं ज्ञानी? अरे कितने बड़े क्रोध करते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी आप हमारे पुराण शास्त्र में सुने दिखाई पड़ते हैं, क्या क्या क्रोध है, क्या अभिशाप दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये क्रोध है और भय है और लोभ है, मोह है, भेद है, मदस, ये सारे जो है धर्म अधर्म जो है ये कर्म का, ये सब जो है आपको सिद्ध करके लाना पड़ेगा। तद वशाच तनुग्रह, यानी उसके बस में आ जाने से, ये क्रोध के बस से, भय से, लोभ से, मोह से आ जाने से, वशात तनुग्रह, यानी ये जो शरीर प्राप्त होता है, शरीर को ग्रहण करता है, नहीं तो शरीर प्राप्त नहीं होता। कहीं ना कहीं जन्म जन्मांतर कहीं ना कोई राग द्वेष किसी के साथ है, कुछ 20-50 आदमी के साथ है, किसी के धन के साथ है, किसी के कामना के साथ है, उन सभी को लेकर एक जगत जीव की एक सृष्टि बनती है और उस एरिया में पैदा होता है और उनके साथ फिर संबंध होता है, ये शरीर जो है प्राप्त होता है, किसी के साथ माता के रूप में, किसी के साथ पत्नी के रूप में, किसी के साथ पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, बंधु के रूप में, ऐसा होकर एक छोटा सा एक सृष्टि बनती है, शरीर प्राप्त होता है उसके कारण से ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।